సర్వోభినేదు తం సర్వభూతదయం మునిమాన్. में प्रवास में कहीं कहीं पर अच्छे अच्छे विचार आते थे, विशेष करके कोई प्रतिरोध होने पर, जब कोई प्रतिरोध कर रहा हो उस समय अच्छे अच्छे विचार युक्ति तर्क के लिए आते. इस समय वहां कहा इस फोन वालों ने 17 पेज का हमारे विरुद्ध में लिखा, जो इनको सुनने मत जाना कोई, क्योंकि ये जिस भक्ति की बातें कर रहे हैं वो हम लोगों के गुरु जी से इनका भिन्न प्रचार का विषय है. हम लोग कहते हैं कि पुस्तकों को जो स्वामी जी ने लिखा और जो छपी हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना से गोलोक वृंदावन में हमारी वहां पर हम चले जाएंगे सीधा. उन्होंने हम लोगों को कहा कि गायों को पालो, दूध बेच सकते हो, और ये बिजनेस करते हुए भी सीधा वैकुंठ नहीं, एकदम गोलोक वृंदावन में तुम लोग कृष्ण की सेवा पाए, अब इससे बढ़कर के कुछ नहीं. उन्होंने जो कुछ लिखा है ग्रंथों में, इससे बढ़कर के कुछ और लिखने, कोई पुस्तक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. जो कुछ लिख दिया है उसे ही हमारा कल्याण हो जाएगा, और कुछ न देखने की जरूरत है, न सुनने की, कोई भी ग्रंथ और कुछ देखने की जरूरत है नहीं. तो जब हमसे सभा में पूछा गया जाइलेन जी के रूप में, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचार आए. पहला तो उनका उत्तर ये दिया कि तुम ही लोग बताओ, आज यदि भक्ति वेदांत स्वामी जी होते आज तो करीब करीब 1900 कितने में गए, 77 में. आज कितना वर्ष हो गया,
19-20
वर्ष हो. अच्छा वो रहते तो 19-20 वर्ष में कुछ लिखते कि चुपचाप बैठे रहते, मुक्ति बन जाते, कुछ लिखते कि नहीं. तो यदि उनका लिखना ही और जो कुछ है वो शेष हो गया था तो चुपचाप मूर्तियां बंद करते रहते ना कुछ लिखते, तो कुछ जरूर बाकी है, इसे मालूम पड़ता है. दूसरी बात, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम 10वें स्कंद की टीका पूरा हम करें, किंतु वो 21-22 तक कर करके चले गए. तो ये काम उनका बाकी है कि नहीं है, 10वें स्कंद का पूरा ये टीका लिखना, जो असल में जो है वही नहीं लिखा उन्होंने. मैं उनकी बात क्या कहूं, स्वामी जी की बात क्या कहूं. स्वामी जी के गुरु के गुरु के गुरु जो व्यास जो हैं, जिन्होंने सारे वेद उपनिषद शास्त्र सब लिख दिया, तो अभी कुछ बाकी रह गया था कि नहीं, भागवत. अच्छा भागवत लिख दिया तो सब कुछ हो गया कि नहीं पूरा, तो तब रूप सनातन ने क्यों लिखा. यदि सभी कुछ उन्होंने लिख दिया था और व्यास जी ने भी लिख दिया था और कुछ बाकी नहीं था व्यास जी के बाद, तो फिर हमारे गोस्वामियों ने क्यों लिखा, ये चैतन्य चैतामृत क्यों लिखा. हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु उज्जवल नीलमणि ग्रंथ और जो ग्रंथ लिखे हैं, ललित माधव विदग्ध माधव जी गोस्वामी ने लिखा, गोपाल चंपू और वृंदावन चंपू उन्होंने लिखा और दूसरे ग्रंथों को लिखा, ये सब पढ़ने की जरूरत क्या है. तो उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया, कुछ उनमें से लिखकर के थोड़ा सा ही लिखा और कुछ नहीं लिखा, बहुत कुछ बाकी है, बाकी रहेगा भविष्य में, जो आते जाएंगे वो सब लिखते जाएंगे. चीज एक ही है क्या, कृष्ण प्रेम, यही प्रयोजन, यही चीज है. इसको नए रंग बिरंगे बोतलों में समय के अनुसार में देना, यही आचार्यों का काम है. स्वामी जी ने लिखा क्या नया? कुछ लिखा है नया? क्या लिखा? भागवत की टीका, ये तो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती छात्र इत्यादि कर गए, बल्कि उनको भी पूरा नहीं दे सके, नहीं दे सके हैं सर। अभी गीता की टीका हम लोगों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती छात्र जी के लिख करके अभी प्रकाशित करें, देखेंगे जैसे उसमें का कुछ भी उसमें नहीं है। वो तो जंगल साफ कर रहे थे, अब कुछ देते, इसलिए सब कुछ नहीं लिख दिया है, ऐसा मत समझो। आने वाली पीढ़ी में कितने बड़े बड़े आचार्य होंगे, बहुत कुछ है लिखना बाकी। मैं कहता हूं इन लोगों की बात छोड़ दो, स्वयं कृष्ण भी यदि लिखे, बलदेव प्रभु भी लाखों अनंत मुखों से लिखे, तो भी कृष्ण की गाथा पूरी नहीं होगी। अनंत मुखों से अनंत वर्षों तक अनंत काल तक लिखते रहने पर भी कृष्ण अपने को ही स्वयं उनकी लीलाओं को नहीं लिख सकते हैं, ये स्वामी जी और सब लोग क्या है। बड़े जोरदार भाषा में हमने उनका खंडन किया, सब लोग देखते रहे। इसलिए कृष्ण की अनंत जानंत एव जानंतु कि मैं भक्तवा पुनः मनसो बपसो बाचो न गोचर न गोचर। ब्रह्मा जी कहते हैं चार मुख से, स्वामी जी के कितने मुख थे, कितना मुख था? कृष्ण तो मरे भी नहीं, हम लोग तो शरीर भी छोड़ देते हैं, यद्यपि आत्मा अजर अमर है, तभी ब्रह्मा जी नहीं लिख सके इतनी आयु में चारों मुखों से वेद का गान करते हुए। व्यास जी इतने ग्रंथों पर उन्होंने ही पूरा नहीं किया, जो व्यास के ग्रंथ में नहीं है रूप गोस्वामी ने उसको एकदम खोल करके एकदम लिख दिया। अंग्रेजी संस्कृत भाषा में हम लोग नहीं जानते हैं, इसलिए चैतन्य चैतामृत में उसको ऐसा खोल करके लिखा जो भागवत में कहीं नहीं लिखा, उस प्रेम को रूप गोस्वामी ने। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो लिखा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नहीं लिखा। ये बड़ी बड़ी सब गंभीर बातें हैं जिसका सुनने का मैं अधिकारी नहीं है इस जगत में। उस जगत में से वैकुंठ वार्ता में हम लोगों के गुरु जी कहते थे वहां से आता है तो हम लोग इस जगत में कुछ लिखते, प्रभुपाद जी ऐसा करते, इसे सब कुछ लिख दिया, यह बात छूटी है, ये बात ठीक है। कोई लिख ऐसा नहीं कर सकता जी, वो रहते तो नहीं कहते। अभी कितने अभी ग्रंथ लिखते, सारा जीवन लिखते रह जाते। अभी तो भक्ति रामी सिंधु पर लिखते तो उनका 10 वर्ष चला जाता, उज्ज्वल निमनी है। हाँ, भक्ति रामी सिंधु बिंदु ही नहीं लिखा उन्होंने, इन्हें सब कुछ नहीं रहने पर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं जो व्यास जी ने चैतन्य लीला के व्यास जी ने लिखा तो उनका चर्बित चर्बन में करता हूं। और सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हमारे जीव गोस्वामी ने और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में, हमारे पूर्व गुरुओं ने जो श्रीमद्भागवत का रसा स्वादन किया और चिबा करके थोड़ा सा रख दिया, मैं उसको फिर से चिबा, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना चूस लेते और फिर उसको रस तो भीतर चला गया, और गन्ने का जो चूसा हुआ है वो बाहर फेंक दिया ना, या आम की गुठली कालिदास जी चिबा चिबा करके चूस चूस करके पुनः पुनः फेंक दिया, उसको उठा करके कालिदास लहरी जी, ऐसे ये सब चीजें हैं श्रीमद भागवत, उससे भी बड़ा रस।
जैसे बच्चे पिता माता तामुल चबाए तो पान चबाए तो मुंह से निकाल के खाते
तो इसलिए ये सब जिनको बुद्धि नहीं है वैसा कहेंगे निर्बुद्धि लोग। एक विचार हमको बहुत सुंदर आया, नया सा विचार, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, इसमें साध्य और साधन की बात बतलाई है ना, साध्य और साधन, खूब ध्यान से सुनना, साध्य और साधन की बात। अच्छा, पहले साधन का विचार करना चाहिए कि पहले साध्य का विचार करना चाहिए, बोलो तो? पहले साधन का निर्णय करेंगे कि पहले साध्य का निर्णय, बोलो तो? हाँ, कान मल देंगे तुम बोलो पंडित लोग, साध्य कैसे साधन का ही हुआ नहीं है, साध्य का विचार करेगा
तो
है? नहीं सुनाई पड़ता, जोर से बोलो। फिर मत पहले चढ़ो, चलाओ, फिर मत छोड़ो, बंदूक मत छोड़ो, पहले पहले क्या करो, क्या चीज किसको हमको वेदना है तीर से? अर्जुन से द्रोणाचार्य जी ने कहा, पहले तो दुर्योधन से कहा, इस पक्षी का सुख पक्षी मिट्टी का बना करके रख दिया, देख रहा है इसकी आंख में तीर मारना है, हाँ हाँ गुरु जी, अच्छा ये पेड़ देख रहा है, हाँ गुरु जी पूरा पूरा का पूरा देख रहा है, और हमें देख रहा है, हाँ, और ये बच्चे लोग हैं देख रहे हैं, अच्छा तो तुम अभी रख दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। भीम को बुलाया, देखो सुख पक्षी को देखते हो, आता हाँ देखता हूँ, पेड़ को पूरा पेड़ नहीं उस डाली को देखता हूँ, पूरा डाली देखता, आता हाँ डाली देखता, सुख पक्षी को पूरा देख रहा हूँ, तुम रख दो तुमसे नहीं हो, सबको रखवा दिया। अर्जुन को बुलाया, हमें देख रहे हो नहीं, पेड़ को देख रहे हो नहीं, डाल को देख रहे हो नहीं, सुख पक्षी को देख रहे हो नहीं, सुख पक्षी की आंख को देख रहे हो नहीं, क्या देख रहा है? बस वही काली बिंदी देख रहा है, बस मारो तो, बस मारो और फैसला, पहले लक्ष्य स्थिर करो। चैतन्य चैतन्य के तीन अध्यायों में, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में साधारण पे गुरु जी की, गुरु वर्गों की वंदना की, गुरु तत्व पंच तत्व का निरूपण किया, और इसके बाद में तृतीय और चतुर्थ में क्या किया, लक्ष्य स्थिर किया, हमारे साधन, हमारा साध्य क्या है, हमारा साध्य क्या है। चतुर्थ अध्याय जो आदि का है चैतन्य चरितामृत में, राधा जी कौन है और उनका प्रेम कैसे है, राधा या प्रणय महिमा की दृष्टि, ये प्रणय महिमा क्या है किसी को समझो, कृष्ण प्रेम प्रयोजन, पहले प्रयोजन स्थिर हो, प्रयोजन माने लक्ष्य, हमारे संसार में इस जन्म में रहते रहते कुछ लिखा, कुछ पढ़ने लिखने पर थोड़ा सा पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा ज्ञान का उन्मेष हुआ, तो पहले हम स्थिर करते हैं कि हम जीवन में क्या करेंगे, जिनके जीवन का लक्ष्य ही कुछ नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए लक्ष्य ठीक रखना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम कृषि करेंगे, वाणिज्य करेंगे, व्यवसाय करेंगे, डॉक्टर ही होंगे, इंजीनियर होंगे, क्या होंगे, पहले थोड़ी सी मैट्रिक तक स्टैंडर्ड तक कुछ शिक्षा साधारण रूप में दी जाती है, ये बुद्धि का विकास हो, इसके बाद में एमए इत्यादि में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट रहता है, बीए में ही सही वो कुछ एक लेवल बन जाने पर, तब उस समय में होता है जैसे पहले लक्ष्य स्थिर करो, जब डॉक्टर हो गए तो मेडिकल जाओ, मेडिकल कॉलेज, यदि वकील बनना चाहते हो तो लॉ कॉलेज में जाओ, यदि होम्योपैथी का डॉक्टर बनना चाहता है तो क्या करो, होम्योपैथी, यदि व्यवसाय वाणिज्य करना चाहते हो तो उसके अधीन में कहीं रह करके कुछ सीखो, तब फिर वो क्या कहते हैं बी कॉम एम कॉम, और उसके बाद में क्या होता है ना, तीन चार वर्ष का मैनेजमेंट डिग्री है, एमसीसी ना कि क्या, हाँ सीएस करो, इसके बाद में प्रत्येक डिपार्टमेंट का ये विचार, पहले लक्ष्य स्थिर करो ये क्या करना है, और तब फिर तीर चढ़ो छोड़ो, फिर उसके लिए कार्य देखो जो कैसे ये मिलेगा। तो हमारे भजन में हम आए हैं, हरि गुरु वैष्णव का संग किया है, तो सबसे पहले क्या स्थिर करना है, साधन नहीं स्थिर करना है भाई, साधन स्थिर करो जो तुम क्या चाहते हो, लक्ष्य ठीक रखो, अब इसके बाद में तो फिर तुम यदि रुपया पैसा धन चाहता है तो वाणिज्य व्यवसाय नौकरी चाकरी करके पैसा कमाओ, यदि संसार का सुख चाहते हो तो ये सुख हुआ क्या, प्रयोजन लक्ष्य, और उसके लिए साधन क्या है, नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति तुम्हारा लक्ष्य हुआ, उसके लिए तुमको ज्ञान की जरूरत है। शंकराचार्य जी के यहाँ चले जाओ या सनक सनंदन सनातन इत्यादि हम के पास में जाओ, वो तुमको कहेंगे या तुम कहो ऐसे हम ब्रह्मास्मि। संसार कुछ नहीं है, झूठा है। संसार के सारे नाश्ते झूठे हैं, ये समझो। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा इसके अंदर में हूं। उसके लिए तुम पहले कर्म करो, इसके बाद में कर्म करते 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 ठीक कर्म योग का आश्रय लो। कर्म योग का आश्रय माने ईश्वर से कर्म को जोड़ो जो ईश्वर के लिए कर्म करते हैं, उससे चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान का कुछ विकास होने लगेगा। होने के बाद में ये संसार मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, यह ज्ञान आएगा। इस ज्ञान के बाद में यदि भक्तों का संग हो गया, शुद्ध भक्तों का, तो क्या होगा? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति, हमारी भक्ति को पा जाएगा। और भक्तों का संग नहीं हुआ तो मुक्ति का तरफ में जा करके हम ब्रह्मास्मि करता हुआ चित्त की शुद्धि होने पर हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि कहेगा। उसका अर्थ विकृत करके तत्त्वम असि नहीं कह करके वो कहा जाए मैं ही ब्रह्म। तत्तस्य त्वम असि, तुम उसके हो। क्या हो? दास हो, ये भाव आएगा। और नहीं तो होगा क्या? आएगा कि मैं ही हूं ब्रह्म हूं। और अंत में उसको वो भी मिल पाएगा यदि भागवत का और भगवान का भक्तों का यदि द्रोही हो, नहीं होगा। इस तरह से कोई कर्म योग का आश्रय करके वह कर्म योगी, फिर ज्ञान योगी और समस्त योगियों में भक्ति योगी कौन सा? योगी नाम सर्वेशान मदगते न अंतरात्मना श्रद्धामान मान जो भजते यो मान। फिर वो कैसा भक्त होगा? मनमना भव मद भक्तो मदियाजी मांग नमस्कुरु माम एव यश्यसि सत्यम ते प्रतिजानु प्रियोसि। ये सब कहा गया है, ये सब लक्ष्य स्थिर करने के लिए शरणागति बताई गई है उपाय के रूप में। दरवाजा, अभी दरवाजे पर जाने के लिए भक्ति नहीं है ये। यदि मुक्ति की जरूरत है तो ज्ञान योग का अभ्यास करो, यदि भक्ति की जरूरत है तो भक्ति योग का आश्रय करो। यदि संसार के सुखों की जरूरत है, रुपए पैसे की, तो कर्म योग का आश्रय करो। इस तरह से यह बतलाया गया, किंतु पहले लक्ष्य तो स्थिर हो। इसलिए चैतन्य चरितामृत में सबसे पहले बतलाया गया, क्या बतलाया गया? बतलाया गया जैसे राधा या प्रणय महिमा की दिशो वा
श्लोक साधेर निर्णय,
वो तो पीछे। फिर कहा राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी, ये दोनों श्लोकों का चतुर्थ अध्याय में वर्णन। ये दो श्लोक है मूल। क्या उद्देश्य है? राधा जी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ बतलाया उसने। कृष्ण कह रहे हैं चतुर्थ आदि चतुर्थ, कृष्ण की लीला संगोपन होने के बाद में कृष्ण विचार कर रहे हैं, भाई देखो मैं भक्तों को प्रेम करता हूं और भक्त लोग हमको प्रेम करते हैं, और जितने प्रकार के भक्त हैं उनमें गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं, जो सबसे हमको श्रेष्ठ प्रेम करते हैं, और उनमें भी राधा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जगत हमको देख करके उनका हृदय सुशीतल हो जाता है, और मैं राधा जी को देखता हूं तो हमारे नेत्र और हृदय दोनों सुशीतल हो जाते हैं। संसार भर में मैं सबसे सुंदर हूं, मैं ही कामदेव अनंग हूं, किंतु अनंग भी हमें देख करके मुग्ध हो जाता है, किंतु मैं राधा जी का सौंदर्य देख के ही मैं मुग्ध हो जाता हूं। हमारा राधा जी के प्रति प्रेम है, किंतु राधा जी का हमारे प्रति जो प्रेम है वो उससे अधिक बड़ा ऊंचा है। मैं राधा जी को देखते ही उन्मत्त हूं, हम हमको देख करके सभी जगत उन्मत्त हो जाते हैं, और मैं राधा जी को देखते ही उन्मत्त हो जाता हूं। तो इसलिए मालूम होता है जी हमारे प्रेम की गुरु श्रीमती राधिका जी हैं, चैतन्य चैतामृत में ऐसा वर्णन। प्रेम का गुरु कौन है? कहाँ से आ रही हो सखी? कहाँ से आ रही?
कस्मात बिंदे की सखी।
बिंदे कहाँ से आ रही हो? राधा कुंड से।
हरि पाद मुला
हरि के चरणों से के निकट से आ रही।
तो
कहाँ वो हैं? राधा कुंड में हैं। क्या कर रहे हैं? नित्य शिक्षा कर रहे हैं। उनका शिक्षा का गुरु कौन है? राधा जी की मूर्ति, जो पेड़ों की पत्तियां जैसे कांपती है ना, वो कांपना राधा जी का कांपना है, वो नित्य शिक्षा है। ऐसे नाचो, वो कृष्ण को सिखा रहे हैं। वही वही जो राधा जी की शैलीश्री मूर्ति, शैलीश्री मैंने क्या
माया,
वो उनसे शिक्षा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं जैसे ये बात तो ठीक है, सब विषय में हमारी प्रेम की गुरु, किंतु एक विशेष बात है, राधा जी सबसे बड़ी हैं। तुम लोग जब चैतन्य चैतामृत पढ़ना है तो खूब गंभीर रूप से पढ़ना, तो ये समझ में आएगा, कुछ नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। किंतु एक कोई बात हम में ऐसी है जो राधा जी को अधिक उन्मत्त कर देती है हमारे अंदर में, क्या जाने कौन सी ऐसी बात है, वो मेरे अंदर में है जो राधा जी में नहीं है, किसी में नहीं है। विचारिए सब विपरीत, यदि अच्छी तरह से विचार करो तो अभी जो मैंने कहा, जो राधा जी हमसे सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रेम की गुरु हैं, सौंदर्य की मूर्ति हैं, खान हैं, सब गुणों में आगर हैं, किंतु जब विचार करते हैं तो एक उल्टा सा दृश्य आता है। क्या हमारे अंदर में कोई एक ऐसी चीज है जिसको राधा जी देख करके क्यों उन्मत्त होती है? मैं तो उनको देख करके उन्मत्त नहीं होता, इसलिए कोई चीज जरूर है। वो क्या चीज है? वो चीज क्या है? प्रेम में हमसे वो श्रेष्ठ है, सौंदर्य में श्रेष्ठ है, सब कुछ है, किंतु हमारे अंदर में एक ऐसी चीज है जिसको देख करके वही नहीं, पशु पक्षी की पतंग सब उन्मत्त हो जाते हैं, हिरण प्रमत्त हो जाते हैं, प्रणय की भीख मांगने के लिए हमारे सामने आते हैं, नदियां स्थिर हो जाती हैं, चलने वाली ऊपर से धारा आती है, नीचे से भी धारा आने लगती है, भौंर पड़ जाते हैं, आकाश से पुष्प की वृष्टि और जल की वृष्टि होने लगती है, सुख पक्षी मयूर जो नाचते हैं वो चुपचाप नाचना बंद कर देते हैं हमें देखकर। हमारे अंदर में क्या चीज है? इसलिए हमको ये जानना है राधा जी क्यों उन्मत्त, इसलिए हम अपने को देख करके यदि उन्मत्त हो जाएं तब समझेंगे वो क्या चीज है। ये कैसे होगा? राधा जी का भाव लेकर के, तब फिर अपने को हम देखें तब समझेंगे जी हमारे अंदर में वो क्या चीज है। इसलिए राधा या तब वो समझेंगे, इसलिए हमारे अंदर में क्या चीज है कुछ कृष्ण में ऐसी विशेषता जिसको देख करके सभी उन्मत्त हो जाता है, राधा जी उन्मत्त हो जाती हैं। तो क्यों होती हैं? राधा जी में महाभाव है जो कृष्ण में नहीं है, वही महाभाव उन्मत्त कराता है। वो महाभाव कहां से आए? यदि राधा जी कृपा करके दे दें तब फिर अपने रूप को देखें तो कृष्ण भी अपने रूप को देख करके उन्मत्त हो जाए। ये असल बात, वही जो महाभाव है वही हमारा निर्दिष्ट, हमारे भजन का वही साध्य है, वही कृष्ण प्रेम जो राधा जी के अंदर में है, उसी की छीटा गोपियों में है, उसका अंश है गोपियों में और जीव में उनका एक छींटा है, बहुत छोटा सा। जीव का स्वरूप ही आनंदमय है किंतु अभी माया से ढका हुआ है। वह प्रेम कैसे प्रकाशित हो वही साध्य है। कौन सा प्रेम? उस राधा जी की सेवा समझो, या वैसा ही जो प्रेम है, यही सर्वसाध्य सार।
तो राधा प्रेम होना चाहिए, कृष्ण प्रेम कैसे?
राधा जी के प्रति कृष्ण का प्रेम यह कृष्ण प्रेम कहलाता है। क्या कहा? राधा कृष्ण प्रति जे प्रेम ओटा के बोले कृष्ण प्रेम। जे रकम होते माथुर विरह, माथुर विरह का के बोले माथुर विरह कातर गोपीगण, माने कि कृष्ण मथुरा ते चले आसछे। माथुर माने जाना है जो मथुरा ते जे गोपी जादरी गण का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसमें विरह में आतुर हो जाते हैं वसुदेव देव की या वहां कराने वाले, उसको नहीं माथुर विरह कहते हैं। कृष्ण जब मथुरा में चले गए उसके विरह में तड़पती हुई गोपियों का जो प्रेम है इसको कहते हैं माथुर विरह। वैसे राधा जी का जो महाभाव युक्त मादन और मोदन का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। आराधा प्रेम किसको कहेंगे? कृष्ण का राधा जी के प्रति जो प्रेम है उसको कहेंगे राधा। यही जो कृष्ण प्रेम है, भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति, वृंदावन वासियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसमें नंद यशोदा सुबल सिद्धाम इत्यादि का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। उस सर्वश्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठतम कौन है? गोपियों का प्रेम। और उस प्रेम में भी सबसे श्रेष्ठ श्रीमती राधिका जी है। उस राधा जी की सेवा ही, उसमें जो प्रेम है वही प्रेम सर्वसाध्य सार जीव के लिए है। वो कैसे? क्या रघुनाथ दास को तवई वास्मी नजमामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे पंगने माम चरणम। हे राधे, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता, इसलिए अपने चरणों की सेवा देकर के हमें जीवित। पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नन्न कदापि समये किल देवि सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम्। राधिके जी, आप यदि कृपा नहीं करेंगे जीवन को छोड़ दूंगा मैं। राधा जी की दासी मैं उनकी सखी नहीं बनना चाहती, उनकी बराबरी वाली नहीं, मैं तो आपकी दासी बनना चाहती हूं। इसलिए सख्य प्रेम को हमारा नमस्कार है दूर से, सख्य भाव नहीं आपको, बल्कि आपकी दासियों की दासी की दासी की दासी की अनुदासी की अनुदासी की चरण धूली बनना चाहती। यहां पर हिनाथ गोकुल सुधा कर सुप्रसन्न वक्रारविंद मधुरास्मित हे कृपाद्र त्वया विहरते पिणा परी आरात तत्रैव मामपि प्रिय सेवनाय आशा भरै अमृत सिंधुमयै कथञ्चित् कालो मयाति गमिता किल साम्प्रतम् पञ्चेत् मयि विधास्यसि नैव किं मे प्राणै व्रजेन वरोरुबका। हे श्रीमती राधिके, आप यदि कृपा हमारे ऊपर में नहीं करें, तैया असहाय दुर्भागा जी कृष्ण को नहीं चाहता, वृंदावन हम नहीं चाहते हैं, राधा कुंड हम नहीं चाहते हैं राना, इनसे क्या मतलब? यहाँ तक बकारी जो कृष्ण है उनसे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हे श्रीमती राधिका जी कृपा करें। हे गोकुल नाथ, आप यदि कृपा करना चाहते हैं तो राधा जी जहां हैं, जहां आप उनकी सेवा कर रहे हो राधिका जी की, वहां पर हमें भी ले चलिए। हम वृंदावन में आराधा कुंड में नहीं, हमारी तो प्राण श्रीमती का। ये सब चीज क्या है? ये है साध्य सार। जब यह साध्य सार ठीक हो जाएगा, हम क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, साधारण ऐश्वर्यमयी भक्ति चाहते हैं, तो वैकुंठ नारायण की भक्ति, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सखम आत्मनिवेदन। ये भक्ति ऐश्वर्यमयी भक्ति करो, विधि के अनुसार में करो, करते 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 अनर्थ दूर हो जाएंगे, उसे एक प्रेम पैदा होगा, उस प्रेम से वैकुंठनाथ की सेवा मिलेगी। यदि ब्रज में कृष्ण का चाहते हैं भजन करना, तो प्रारंभिक रूप में श्रद्धा से ही दो भाग होते हैं, एक कौन सी श्रद्धा? वैधि श्रद्धा और एक लोभमयी श्रद्धा। बड़े सौभाग्य से लोभमयी श्रद्धा होती है, बिना लोभमयी श्रद्धा के कभी भी कोई ब्रज में नहीं जा सकता, कोई कल्पना नहीं। इसलिए ये संग में, वैष्णवों के संग में हमारा साध्य और साधन निर्णय होगा, तब चलो वहां राय रामानंद जी के चरणों में चलिए, गोदावरी के तट पर चलिए और वहां पर निर्णय कीजिए क्या हमारा साध्य और साध्य। साध्य श्लोक, साध्य निर्णय श्लोक आप पढ़िए, तब वो कहते चले जा रहे। वहां पर तारतम्य नहीं दिखलाया गया है, एक एक शब्द बतलाया गया है, अलग अलग साध्य और अलग अलग साधन, किसी से संबंध नहीं है, सभी स्वतंत्र साधन साध्य और स्वतंत्र साध्य है। यदि वात्सल्य प्रेम, पहले तो संसारिक सुख चाहते हो, वर्णाश्रम धर्म में रह करके, घर में रह करके विष्णु की पूजा करो, ये क्या है? साधन। और साध्य क्या हुआ? संसारिक सुख और अधिक से अधिक मुक्ति, इससे कुछ नहीं, वर्णाश्रम धर्म रह कर। यो बात जाके कहा कर्म अर्पण साध साध कर्मों का अर्पण करो। महाप्रभु ने यो बात दिया सर्वधर्मान पत्य जो सब को छोड़ो। महाप्रभु ने यो बात जाके कहा गीता का जो अंतिम श्लोक है उसको क्या कहा क्यों कहा? संसार के डर से अर्जुन कह रहा है मुझे क्या करना चाहिए, हमको डर है माता पिता को छोड़े कि नहीं, संसार के कर्तव्य को छोड़े नहीं, डर लगता है जैसे पाप होगा, माता पिता ने हमारा जन्म दिया, गुरुजनों ने हमको पढ़ाया लिखाया सब किया, छोड़ेंगे तो पाप लगेगा। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मानुपत्ति जमामि एकम्। उसे होगा क्या? अब धर्मान प्रत्यज माम एक शरणम प्रजा अहम काम सर्व पापे वो वही मुख्य श्यामी मां सूचा। शोक मत करो, शोक को दूर करने के लिए कह रहे। इसमें भक्ति की बात कहां आई? भक्ति की बात ही नहीं। आगे पढ़िए ज्ञाने प्रयास समुपासन मंत एव जीवंत सन्मुख हरिताम। ज्ञान का प्रयास छोड़ो। ज्ञान का माने क्या? कौन सा ज्ञान? निर्विशेष ज्ञान कोई नहीं करे वो तो भक्ति का अपराधी है, अपराध है, उसे कुछ भी नहीं होगा। यदि भक्ति नहीं सहायक रहेगी तो ज्ञान कुछ कर्म अपना जो मुक्ति का फल है वो भी नहीं दे सकती है। तो यहां पर किस बात की कहे, किस ज्ञान की बात कहे? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या? कृष्ण कौन सा है, माया क्या तत्व है, जीव तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है, पंच तत्व क्या है, इस सबको बतलाने के लिए ये जो ज्ञान। इसके लिए भी छोड़ो प्रयास चेष्टा छोड़ो। क्या करो? भगवान के ये सब नित्य लीला कथाएं हैं इसका श्रवण करो, उसमें प्रसंग वशतः ये तत्व ज्ञान जितने हैं सब अपने आप आ जाएंगे। ज्ञाने प्रयास समुपासनमन्तेव किवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता तन्वन मनोभि प्रायशो अदितदीतोऽपि। उनकी कथाओं को सुनने से कौन सी? आज यशोदा जी कृष्ण के कमर में रस्सी दे करके बांध रही, बांधते बांधते थक गई, दो अंगुल पर कम पड़ जाता है, सारी बल की रस्सियां खत्म हो गई, दो अंगुल, तीन अंगुल, चार अंगुल, पांच अंगुल नहीं बचता, केवल दो अंगुल बचता। क्या क्या है? कृष्ण परम ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, अखिल रसामृत सिंधु है, उनको पाना सहज नहीं है, उनको वशीभूत करना तो बड़ी कठिन बात है, और यशोदा जी उनको वशीभूत करना बांधना है। बांधना मैंने क्या? वशीभूत कंट्रोल करना। उसमें दो अंगुल कम पड़ जाती है, अपना साधन भजन और कृष्ण की कृपा नहीं है तब तक, ये दो चीजें हैं। अब इसमें क्या आया? कृष्ण अचिंत महाशक्तिशाली हैं, अखिल शक्ति के वो मूल हैं, और वही परम तत्व हैं, ये सब उपने आप आ गया। साधन क्या हुआ उनको पाने का? अनकंडीशनल सरेंडर पहले करो, और करके फिर क्या करो? भक्तों के संग में रहो, सीखो, और जब तक नहीं उनको बांध सकेंगे तब तक अन्न दाना जल कुछ नहीं खाएंगे, या तो मरना नहीं तो करना, दोनों में से एक। इसमें अनुकूल चीजों को ग्रहण करूंगा, प्रति चीज सबको छोड़ दूंगा। कृष्ण जब हमारे रक्षक हैं तो हमें किस चीज का डर है? जगत का पालन करते हैं, जगत वाले क्या कर रहे हैं, सब मिल करके भी हमको क्या देंगे, और जगत यदि असंतुष्ट भी हमारे प्रति हो जाता है तो क्या बिगाड़ लेगा यदि कृष्ण प्रसन्न है? इतना तो होना चाहिए संकल्प। विश्व ब्रह्मांड के लोग हमारे विरोधी हो जाएं, हमारा क्या कर लेंगे? प्रहलाद का क्या कर लिया, मीराबाई का क्या कर लिया, हरिदास ठाकुर का क्या कर लिया? इतना तो विश्वास रखो, और यह शरणागत नहीं है तो घर में बैठो साधु संग करो, इतना विश्वास रखो। कोई समस्या नहीं है जगत में, समस्या है कृष्ण की शरणागति नहीं है, वो हो जाएगी तो बस हम लोग निर्भीक संसार में हो जाएंगे। संसार हमारा होल विरोध करता है, अकेले रहेंगे तभी शुद्ध भक्ति करेंगे, ऐसा साहस आ जाएगा ना? तो इसका मतलब यानी गुरु वैष्णव को भी अभिमान से उनका अपमान करो ऐसा मत समझो, इसलिए पहले शरणागति हो। किसी चीज कोई समस्या, जब समस्या है कृष्ण की भक्ति नहीं है, ये कैसे हो? इसलिए ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके जहाँ भगवान की कथाएं हो रही हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई वक्ता है उनको प्रणाम करो। श्रोता जितने बैठे हैं बड़े प्रेम से सुन रहे हैं उनको प्रणाम करो, उस कथा को प्रणाम करो, उस कथा के जो वक्ता और श्रोता है मूल में, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित हैं श्रोता, और वहां पर सुन रहे हैं भागवत की कथा हो रही है, उस कथा को प्रणाम करो, स्थान को प्रणाम करो, उसके आयोजक को प्रणाम करो, जब इतना सुंदर आयोजन किया, और उस कथा को दंडवत प्रणाम करो, उस स्थान को प्रणाम करो, और उनकी कथाओं को सुनो, उसमें संबंध अविधेय प्रयोजन जो कुछ है जिनका सब कुछ उसी में तुमको मिल जाएगा। पृथक रूप से कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी कि आत्म तत्व क्या है, ज्ञान तत्व क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ये सब कुछ नहीं, उसी में आ जाएगा। भागवत सुनो, देखो उसमें क्या बाकी रह गया, चैतन्य चरितामृत सुनो, कोई चीज बाकी रह गया? महाप्रभु की लीला सुनने से, महाप्रभु की लीला, कृष्ण की लीला, कृष्ण की लीला कैसे दुग्ध है, कैसा औटा हुआ दूध है भागवत, और उसमें चैतन्य महाप्रभु जी की लीला मिलाओ तो फिर क्या हो गया, कर्पूर, अत्यंत सुगंधित मीठा और स्वादिष्ट घनापूर हो गया। इन कथाओं को सुनना है, सुनते रहो, देखो जी हो भक्ति के साथ, महाप्रभु जी ने यो है आगे बढ़ा, महाप्रभु और आगे बढ़ो, महाप्रभु जी ने तब राय रामानंद ने कहा नाना उपचार कहा, फिर इसके बाद में वो कहा कृष्ण भक्ति रस भाविता, इसके बाद में और आगे बढ़िए, तुमने दास भक्ति सर्वसाध्य सार हनुमान जैसा दास, इसके बाद में और आगे बढ़ जाओ सखाओं का, उसके बाद में वात्सल्य, उसके बाद में और बढ़ो गोपियों का, और यदि कुछ जानते हो तो कहो, उन्हें इसके बाद में पूछने वाला तो जगत में आज तक हमने नहीं देखा। अच्छा तो जरा बोलो तो राधा जी का सबसे, उनमें उन्होंने तर्क किया जो अकेली चोरी करके क्यों चले गए, सबको देखते समय देखते देखते सबको छोड़ करके चले जाते, तब उन्होंने सिद्ध किया जो राधा जी का प्रेम ही सर्वसाध्य, ये कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे, अवकाश सबका तो बतलाया ये ऐसे मिलेगा, किंतु इसके लिए ब्रज में गोपियों का भाव पाने के लिए ये साध्य यदि है तो उसका साधन कैसे होगा, एक गोपियों का इसमें अधिकार है, दूसरों का अधिकार नहीं, तो गोपी भाव के बिना नहीं होगा। अंत में कंक्लूजन, अब इन चीजों को विस्तृत रूप में जाने पर भक्ति रसामृत सिंधु उज्जल लेकर के बैठिए, चैतन्य चरितामृत लेकर के बैठिए, खूब विचार कीजिए। तो पहले साधन साध्य स्थिर करो, जिसका साध्य स्थिर नहीं हुआ उसका भजन नहीं हुआ, आ रहा है समझ में, जिसका साध्य ही नहीं निर्णय हुआ तो वो साधन क्या करेगा, किस चीज के लिए साधन करेगा, जैसा साध्य होगा उसको पाने के लिए वैसा साधन, इसलिए पहले साध्य स्थिर करने के लिए पहले चतुर्थ अध्याय, इसके बाद में राय रामानंद संवाद लिया है आठवें में, मध्य आठवें में, फिर सनातन गोस्वामी का साधन कैसा होना चाहिए, तब साधन का विचार करने के लिए सनातन और उप गोस्वामी के पास में चलो, चैतन्य चरितामृत प्रसंग तब पीछे, बस इस तरह से पहले निर्णय करके भजन करो भाई, आ कुछ निर्णय नहीं किया तो दो चार दिन भजन करेंगे मन नहीं लगेगा, ये पोथी पाता और माला झोली सब छोड़ करके फिर इसे पहले साधन लो, हम क्या चाहते हैं जीवन में, हमारा उद्देश्य क्या है, पहले ये स्थिर हो तब उसके लिए साधन भजन करके आगे बढ़ेंगे हम, और नहीं तो कुछ स्थिर ही नहीं है तो हम साधन भजन क्या करें। इसलिए साधारण रूप में समझो कि भक्ति ही हमारा साधन है, कौन भक्ति हमारा साध्य है, प्रेमा भक्ति साध्य है, साधन भक्ति हमारा
साधन
साध्य, बीच में एक और आ जाएगा भाव भक्ति, ये सबको साधु संतो के संग में अच्छी तरह से समझ करके आगे बढ़ेंगे तब कुछ हमको लाभ होगा, और नहीं तो कोटि जन्म घूमते रहो संसार की समस्याएं हमको इतना तंग करेंगी जो हम भक्ति भूल जाएंगे और संसार की समस्या हल करने में लग जाएंगे, पैसा कहाँ से आए, हमारी निंदा करते हैं उनको कैसे पछाड़े, हाँ ये काम कैसे होगा, रोग हो गया ऐसा होगा, बस इसी में रह जाओगे बस। इसलिए पहले स्थिर करना है जो साध्य हमारा क्या है, हम क्या चाहते हैं जीवन, आज यहीं तक रहे वंशा कल पतुर्भ्य कृपा सिंधु पतितानं पावन लो।